الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ ایک نیا عنوان ہے، اور آپ حضرات یہ سوچیں گے کہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے، حالانکہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. حقیقت حال تو یہ ہے کہ مسلمان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. مومن کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یعنی ہر عمل زندگی کا جو بھی ہو، وہ اس طرح گزارے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ پہلے سنت کے مطابق ہو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. آج کا عنوان بڑا اہم ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے، اور بے برکتی جو ہمارے رزق میں ہو رہی ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو ذہنی ایک تھکاوٹ ہے، بے چینی ہے، قلبی بے قراری ہے، یہ ساری چیزیں اس سے دور ہو جائیں گی. پہلی چیز تو یہ کہ مسلمان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف ہو، تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ یقیناً خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں. اور اسی چیز کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم مختلف مسائل، مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی الجھن آئے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں جو شریعت و سنت کے خلاف ہو. اگر ایسا ہے تو پہلے اپنا محاسبہ کر کے اس چیز کو دور کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور سچے دل سے توبہ کریں کہ دوبارہ وہ کام نہیں کریں گے. ہم واویلا کرتے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم بے قرار ہیں، اور اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اور مسلسل غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں. ادھر حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، میں یہ چیز کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، ہوتے ہوتے نماز کا وقت ضائع ہو گیا، نماز قضا ہو گئی. اچھا، فجر نکلی تو ظہر میں پڑھ لیں گے، ظہر تو عصر میں، عصر تو مغرب میں، ہوتے ہوتے عشاء ہوئی، اور اس کے بعد پانچوں نمازیں غائب ہو گئیں. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی کان میں حی علی الفلاح کی آواز آئے، آپ فوراً مسجد کا رخ کریں، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم گھر میں وقت پر نماز ادا کر لیں. اگر ہم اس طرح کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. اگر کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے تو وہ کام مکمل نہیں ہوگا، اور نماز کی وجہ سے اگر کام چھوڑ دیا گیا تو یقیناً وہ کام مکمل بھی ہوگا، اور کامیابی بھی اس میں ہمیں ملے گی. اب آئیے ذرا سا ہم غور کریں، کچھ کام تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، کچھ احکامات، مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر چیزیں. یہ وہ فرائض ہیں کہ جو اگر بندہ نہ کرے تو قیامت میں جواب دہ ہوگا، ان تمام چیزوں کا سوال ہوگا. اور کچھ احکامات وہ ہیں جو ہم پر فرض تو نہیں ہیں، نہ ان کے متعلق کوئی سوال ہوگا کہ یہ کیوں نہیں کیا، لیکن وہ احکامات ایسے ہیں کہ اگر ہم وہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا ہمیں ضرور حاصل ہوگی. اب وہ کام جو فرض ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ تمام چیزیں. لیکن وہ کام جو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے طور پر کریں، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، نوافل، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، ایثار، قربانی، صلہ رحمی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جب ایک مسلمان یہ کرتا ہے، तो अल्लाह तबारक व ताला की रजा उसे हासिल होती है। और ये काम कोई मुश्किल नहीं है, हर मुसलमान ये कर सकता है, लेकिन हम जानबूझकर इन कामों को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कोई फर्ज थोड़ी है हमारे ऊपर जो हम करें। हालांकि हमें ये चाहिए कि हम इन कामों को कर कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में मकाम हासिल कर लें और उनका क़ुर्ब हासिल करें। हमने सबके लिए वक्त रखा है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, घूमने फिरने के लिए वक्त है, शॉपिंग के लिए वक्त है, दोस्त अहबाब के लिए वक्त है, ख़रीदो फरोख्त के लिए वक्त है, हर चीज़ के लिए वक्त है। ज़रा सा गौर करें, क्या उसके लिए भी कोई वक्त है जिसने आपको पैदा किया, जो आपको कितनी अच्छी अच्छी नेमतें खिलाता है, जिसने हमारे सांस लेने के लिए हवा को पैदा किया, जिसने चलने के लिए ज़मीन को पैदा किया, जिसने चांद और सूरज को रोशनी के लिए, चमक के लिए, ठंडक के लिए पैदा किया, क्या उसके लिए हमने कोई वक्त रखा? अगर ये सवाल किया जाए तो अमूमन लोग ये कहते हैं कि जी ये 5 वक्त नमाज जो है ये वक्त है ना, आप कहते हैं ना अल्लाह ताला के लिए वक्त रखा, तो ये 5 वक्त नमाज है, हम 5 वक्त उसके बारगाह में झुक रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, ये 5 वक्त जो हम जा रहे हैं ये उसी के लिए तो है। हमने कहा बिल्कुल ठीक, वाकई ये 5 वक्त अल्लाह के लिए हैं, ये 5 नमाजें अल्लाह के लिए, लेकिन ये तो उसने रखी ना, आपने क्या रखा, ये तो फ़र्ज उसने की और ये फ़र्ज है, और अगर कोई ये कर रहा है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा माज़ल्लाह अल्लाह ताला पे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ये फ़र्ज है, अदा करना ज़रूरी है, लाजिम है, अगर नहीं करेगा क़यामत में बात पुरुष होगी। आप ये बताइए कि आपने क्या वक्त रखा, हमने तो उसके लिए कोई वक्त नहीं रखा। तो जब हमने हर एक के लिए वक्त रखा है तो उसके लिए भी वक्त रखना चाहिए। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो आइए हम आपको एक ऐसी मिसाल दें कि बात आपके जहन में बैठ जाए। देखिए, एक होता है ऑफिशियल टाइम और एक होता है ओवर टाइम। ऑफिशियल टाइम सब बराबर है उसमें, मिसाल के तौर पर एक कारखाने में 400-500 मजदूर काम कर रहे हैं, 8 बजे से शाम को 5 बजे तक उनका टाइम है, ये ऑफिशियल टाइम, इसमें सब बराबर है, कोई कमी बेशी नहीं और सबको एक जैसी तनख्वाह मिल रही। लेकिन एक है ओवर टाइम, यानी 5 बजे तक तो उसने काम किया, फिर 2 घंटे मजीद काम किया 8 बजे तक, और ओवर टाइम का अलहदा से मिलता है, ओवर टाइम का मुआवजा अलहदा से मिलता है। आप देखें बहुत से लोग आते हैं हमारे पास कि दुआ करें कि ओवर टाइम लग जाए, हम फला कारखाने में हैं, फला कंपनी में हैं, बीवी बच्चों का साथ है, ओवर टाइम लगेगा तो तनख्वाह के अलावा भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा तो उसमें गुजारा हो जाएगा। पता ये चला कि जो ऑफिशियल टाइम है उसके जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो मिलेगी, लेकिन जो ओवर टाइम है उसका अलहदा से मिलता। बिला तशबीह व तमसील, जिस तरह इस दुनिया में ऑफिशियल टाइम में सब बराबर हैं और ओवर टाइम में जिसने ज़्यादा मेहनत की, जिसने ज़्यादा वक्त लगाया उसको अलहदा से मुआवजा मिलता है, इसी तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सब में सारे मुसलमान बराबर हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको सवाब मिल रहा है। लेकिन ओवर टाइम, अब आप कहेंगे इसमें ओवर टाइम क्या है, तिलावत कुरान ओवर टाइम, जिक्र अजकार ओवर टाइम, नवाफिल ओवर टाइम, अल्लाह के बंदों की मदद करना ओवर टाइम, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की मदद करना, गरीबों को कपड़े पहनाना, कोई किसी के पास कपड़े नहीं आपने उसको कपड़े पहना दिए, किसी के पास खाना नहीं आपने गरीब को खाना खिला दिया, ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, ये ओवर टाइम, ये अल्लाह की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं। और याद रखिए, जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए अल्लाह तबारक व ताला उसे ज़रूर ज़रूर कबूल फरमाता है, इसलिए कि उसमें खुलूस होता है, वो बंदों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए, और जब रब राज़ी हो जाए तो पूरी कायनात राज़ी हो जाए। अब ज़रा सा गौर करें कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या काम नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो वो मामूलात थे जो عبادات کے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں نا عبادات سے ان کا تعلق ہے، مثلا نماز سے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نوافل، ذکر، اذکار، یہ سارے. کچھ معاملات وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، یعنی ایک بندہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جب وہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اپنی رضا کی سند اسے عطا فرما دیتا ہے. اب وہ کون سے کام ہیں؟ اچھا، نہ صرف یہ بلکہ اس کے رزق میں رحمتیں، برکتیں شامل کر دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک درجن میں 12 عدد ہوتے ہیں نا، مثلا آپ نے کہا ایک درجن کیلے تو 12 کیلے، کنو تو 12، اسی طرح جو بھی چیز آپ نے ایک درجن اگر آپ کہیں گے تو اس کا مقصد ہوگا 12 کا عدد، یعنی وہ چیز 12 ہیں. لیکن بعد نے کہا کہ نہیں ایک درجن میں 13، اب آپ کہیں گے 13 کیسے؟ دیکھیے کچھ کام ایسے ہیں جو بندہ جب کرتا ہے نا تو اس کے اندر اگر یہ نیت کر لے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، مثال کے طور پر کوئی غریب، کوئی مسکین، یتیم، کوئی ایسا آدمی آیا جس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں یا کچھ پیسے لے کر آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ مجھے ایک درجن کیلے چاہیے، اچھا اس نے دیکھا کہ واقعی یہ کہیں سے پیسے لے کر آیا ہے یا کسی نے اس کو دیے ہیں، تو اس نے 12 کے بجائے 13 دے دیے، ایک اللہ کی رضا کے لیے. جب ایسا کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی سند اسے عطا فرمائے گا. روایت میں آتا ہے کہ ایک دکان تھی جو بہت چلتی تھی، شربت کی دکان تھی، لوگوں کا رش لگا رہتا تھا اور اتنا رش ہوتا تھا کہ لوگ قطار میں کھڑے ہوتے تھے، انتظار کرتے تھے، پھر شربت لیتے تھے، پھر جاتے تھے، اور فری میں نہیں تھا حالانکہ پیسے لے کر، اور قطار ایسے لگی ہے کہ جیسے کہ لوگ فری میں لے رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ یار یہ اس کی اتنی شہرت اور اتنی اس کی فروخت جو ہو رہی ہے شربت کی، اتنا بک رہا ہے، اتنی اس کی آمدنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ شربت کا گلاس دیتے تھے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا گلاس، آدھا، یعنی جو گلاس کا آدھا ہو یا اس سے کم ہو، وہ ایک اپنی طرف سے دیتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ جناب جی آپ کی دکان کی شہرت اور اس کی اتنی بکری جو ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ صرف ایک ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ نیت کی ہے کہ جو بھی گاہک میرے پاس آئے گا، چاہے وہ ایک گلاس لے یا 2 گلاس لے، میں اپنی طرف سے یہ آدھا گلاس صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اس کو دوں گا، کوئی بھی ہو. جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے میرے کاروبار میں بڑی برکت اور بڑی رحمت اس میں شامل ہو گئی، تو جو بھی آ کر مجھے دیتا ہے میں اپنی طرف سے آدھا گلاس اس کو ضرور دیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر اپنے دل میں نیت کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں، روزگار میں برکتیں نازل فرماتا ہے. مثال کے طور پر ایک غریب مزدور ہے، اس نے بڑی محنت کی اور پسینوں سے شرابور ہو گیا، صبح سے شام تک محنت کرتا رہا، آپ کے گھر میں کام کرتا رہا. جب اجرت دینے کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ واقعی یہ بڑا غریب ہے، نادار ہے، گھر میں اس کے فاقے ہو رہے ہیں اور اس نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، تو جو اجرت طے ہوئی وہ تو آپ نے اس کو دی، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ پیسے ایثار کرتے ہوئے اور اس کی مدد کے لیے آپ نے اس کو دے دی، صرف اس لیے کہ میں دوں کہ اللہ کا یہ بندہ جو ہے کچھ آسودہ حال ہو جائے، کجھ اس کی مدد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ، کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنی طرف سے اگر آپ دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ نے اس کی اجرت کو روکا نہیں، جو اجرت طے ہوئی وہ آپ نے پوری پوری دے دی. اگر آپ نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں اوور ٹائم، یعنی ایکسٹرا دینا، الگ سے اپنی طرف سے آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ رب العالمین خوش ہو گیا اور روزی میں برکتیں عطا فرما دی. اسی طرح کسی غریب کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور آپ نے اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کپڑے پہنوا دیے، ये भी उसकी पसंदीदगी और उसकी रजा को हासिल करने का तरीका है। एक आदमी है जिसके पास घर नहीं है, आपने उसको घर दिलवा दिया। किसी गरीब की तालीम का खर्चा आपने उठा लिया। अक्सर ऐसा होता है ना, बहुत से लोग तालीम से इसीलिए रह जाते हैं कि उनके पास खाने पीने को नहीं, तो वो तालीम क्या हासिल करें। बहुत से गरीब ऐसे माशरे में मौजूद हैं और मुशाहदे में ये बात आई है कि वो अपने बच्चों को इसलिए तालीम नहीं दिलवा सके कि वो कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं, तो हम इनको तालीम कहाँ से दिलवाएं, खर्चा कैसे करें। और ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने किसी एक बच्चे की तालीम का खर्चा उठा लिया, या ये कहा कि अगर आपके दो बच्चे हैं तो इन दोनों की तालीम का खर्चा मैं दूंगा, आप इस बात से बेफिक्र हो जाए, उनकी किताबें, उनके यूनिफॉर्म, उनके पढ़ने, उनकी फीस, हर चीज़ जो है वो खर्चा उठा लिया। ये अल्लाह की रजा के लिए, अगर ये काम करेंगे अल्लाह तबारक व ताला रिज़क में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएगा। हम एक खर्च करेंगे वो 70 गुना बढ़ाकर फिर लौटा देगा। इन तमाम चीज़ों को गौर व फिक्र करना चाहिए और इन चीज़ों को करने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इतना तवंगर बनाया है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम किसी गरीब को घर दिलवा सकते हैं, हम किसी गरीब के कपड़े बना सकते हैं, हम किसी गरीब बच्चे की तालीम का खर्चा उठा सकते हैं, तो ज़रूर ज़रूर ऐसा करें कि आप एक बच्चे की तालीम का खर्चा उठा लें। हो सकता है कि वही आपकी मग़फ़िरत बख्शिश के लिए काफ़ी हो, यह हकीकत है। अल्लाह तबारक व ताला से राज़ी होगा और जब वो तालीम हासिल करेगा और उस तालीम के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुँचेगा, ख़ुद उसको फ़ायदा पहुँचेगा, सवाब आपको मिलता रहेगा। ये भी एक किस्म का सदक़े जारिया है। तो हम तमाम लोगों को इस चीज़ पर गौर व फिक्र करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है तो हम अपने मुसलमान भाइयों को, अच्छा सबसे पहले आप देखें अपने अजीज़ों रिश्तेदारों जो आपके करीब हैं, आपके बहन भाइयों में तो कोई ऐसा नहीं, अजीज़ और रिश्तेदारों में तो कोई ऐसा नहीं, करीब के कोई रिश्तेदार ऐसे तो नहीं कि जो कोई बच्चा तालीम से महरूम हो, किसी के पास पहनने को कपड़े ना हो, किसी के पास ईद मनाने के लिए कुछ ना हो, किसी के पास रमज़ान मुबारक गुजारने के लिए, सहरी और इफ्तार के लिए कुछ ना हो। पहले अपने क़ुर्ब जवार में नज़र डालें, अपने पड़ोस में नज़र डालें। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हक़ उनका है जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबको तवंगर रखा है, सब आराम से इस्टेब्लिश है, कोई मसला नहीं है, फिर आप आगे बढ़ें, फिर अपने दोस्तों में देखें, फिर माशरे में और आगे बढ़ें और देखें। इस तरह अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इस तरह मदद करेगा तो आप देखेंगे पूरा माशरा जो है वो सुधर जाएगा, पूरा माशरा सुधर जाएगा और हर शख्स जो है वो आसूदा हाल हो जाएगा। आप गौर करें कि हिजरत के बाद जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे तो वो महाजिर जो अपना सब कुछ मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़कर मदीने तैयबा आए थे, बिल्कुल गरीब नादार, यानी वहाँ के अमीर से यहाँ के फ़कीर, क्योंकि मक्का के काफिरों ने एक फूटी कौड़ी भी, जिसे कहते हैं आप, वो भी उनको साथ नहीं लिया, सामान उनका छीन लिया, उनसे रकम छीन ली, ये दौलत तुमने यहाँ कमाई है, यह हम मदीने शरीफ नहीं ले जाने देंगे, ये माल यहाँ का है, ये वहाँ नहीं ले जाने देंगे। और क़ुरबान जाओ उन सहाबा के रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सिर्फ तन के कपड़ों से वो वहाँ से हिजरत कर गए। ठीक है, ये माल छोड़ दो, ये तुम लेना चाहते हो ले लो, दौलत छोड़ दी, सिर्फ ईमान की दौलत अपने सीने में लेकर रवाना हुए हिजरत करके मदीने तैयबा पहुँच गए। किस लिए? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने के लिए और उसकी रज़ा हासिल करने। अब नतीजा क्या हुआ? जब आका दो जहाँ फ़ख्र कौनो मकाम बाई से तख्लीक इनसो जहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा पहुँचे और आपने देखा वाकई ये महाजिर तो वहाँ जो इनके पास मकान दौलत माल सब ये सब छोड़ कर आ गए और यहाँ पर कैसे गुजारा हो। एक महाजिर को एक अंसार का भाई सरकार ने बना दिया। एक महाजिर को बुलाया, एक अंसार को, अंसार वो जो पहले से मदीने तैयबा में रह रहे थे, इस्टेब्लिश थे, उनके मकानात थे, उनके बागात थे खजूरों के, कोई खजूरों का काम करता था, कोई कोई काम करता था, तो ये सारी चीज़ें थी। एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई बनाया और उन्होंने भी भाई बनने का ऐसा हक अदा किया कि सगे भाई से ज़्यादा बढ़कर उसकी मदद की। अगर किसी के दो बाग थे तो एक बाग अपने महाजिर भाई को दे दिया, किसी के दो मकान थे तो एक मकान अपने महाजिर भाई को दे दिया, किसी के पास दौलत ज़्यादा थी तो आधी दौलत उसको दे दी, ऐसी मदद की कि चंद दिनों में वो महाजिर जो बिल्कुल लुटकर गरीब होकर मदीने तैयबा पहुँचे थे फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने भी कारोबार शुरू कर दिया और चंद दिनों में उनके भी मकानात थे, उनके भी बागात थे। ये क्या है? आपस में मोहब्बत, खुलूस, रिश्ता मवाखात, अखुबत, जिसका दर्स नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिया। तो अगर आज भी मुसलमान अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, पहले अपने अहलो अयाल, अजीज़ और रिश्तेदार, अपने बहन भाइयों को, अपने ख़ानदान वालों को देखें, उसके बाद दोस्तों को, उसके बाद अहले मोहल्ला को, पड़ोसियों को, इन तमाम चीज़ों को देखें। अगर हमको अल्लाह ताला ने इतना दिया है और कोई ऐसा है कि जिसकी हम मदद कर सकते हैं, अव्वलीन फुर्सत में आप उसकी मदद करें। अगर उसके बच्चे की तालीम का ख़र्चा उठा सकते हैं वो आप उठाइए, अगर उनको कपड़े की ज़रूरत है तो वो आप पहनाएं, जो कुछ आप जिस तरह मदद कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई गमज़दा है उसकी आप दिलजोई कर सकते हैं, आपने उसकी दिलजोई की, उसको तसल्ली दी, ये भी अल्लाह ताला के नज़दीक एक नेकी है और इसका भी अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर अता फरमाए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हम अगर करें तो अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब और उसकी रज़ा जो है वो हमें हासिल होगी। किसी को परेशानी में देखा, बेचैनी में देखा, बेकरारी में देखा, आपने अपनी गुफ्तगू से उसकी दिलजोई की, आपने अपनी गुफ्तगू से उसकी परेशानी को दूर कर दिया, आपने अपनी गुफ्तगू से, हुस्ने सलूक से उसके कल्ब को खुश कर दिया, ये भी अल्लाह ताला के नज़दीक एक नेकी और इस नेकी का अजर भी वो देगा। लेकिन नज़रिया क्या हो कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा। अच्छा, अब हम जब माशरे पर नज़र डालते हैं तो हमारी कैफियत अलग है। रमज़ान मुबारक करीब आए तो कीमतें आसमान पर चढ़ जाती। आप फल फ्रूट आप देखें इफ्तार में इस्तेमाल होते हैं, जो ये बेच रहे हैं वो भी तो मुसलमान हैं ना, उनको इतना सोचना चाहिए कि ये मुकद्दस बाबरकत पाकीज़ा महीना है, इसमें हम ज़्यादा कमाने के बजाय कम कमा लें। अगर हम कीमतें बढ़ाने के बजाय कम कर दें, अल्लाह ताला उसी में बरकतें अता फरमा देगा। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अगर कोई मुसलमान ऐसा करे कि रमज़ान मुबारक में उन चीज़ों को सिर्फ इसलिए कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, उन चीज़ों को कम कर दें कि मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ ना हो, जो गरीब हैं वो भी इनको ख़रीद सकें, अगर इस तरह वो करे, यकीनन अल्लाह ताला उसके रिज़क में, रोज़गार में बरकतें अता करेगा और जितनी कीमत वो कम करेगा उससे दुगना वो अता कर देगा। लेकिन मामला इसके बरक्स होता है। जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है, ज़खीरा अंदोज़ी की जाती है, फिर उसे निकाला जाता है, फिर उसकी कीमत बढ़ाई जाती है और आवाम का खून पसीने का पैसा जो वो मेहनत से कमा रहे हैं उसको बेदरे लूटा जाता है, गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जा रहा। जबकि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, उनका अमल हमारे सामने, मदीने तैयबा में कैद साली हुई, अचानक लोगों ने देखा ऊंट आने शुरू हुए, गल्ले से भरे हुए ऊंट, लोगों ने देखा कि ये किसके हैं। जितने ताजिर थे वो दौड़ गए, जितने बिजनेसमैन थे वो दौड़ गए। जाहिर है उनका तरीका तो यही था कि इस अनाज की शॉर्टेज है मदीने में तो इसको हम पहले से जाकर ख़रीद लें, यानी ये मदीने में दाखिल होने से पहले ही ख़रीद लें ताकि फिर इसकी कीमत ज़्यादा करके हम बेचें। जितने भी ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, सब दौड़ गए कि हम पहले से ख़रीद लें और उसके बाद इसकी कीमत ज़्यादा करके बेचें, जैसा कि उनका तरीक़ा होता है। और ऐसे ही ताजिरों के लिए सरकार ने फरमाया, अत्तुजार हुमुल फुजार, ये ताजिर जो हैं ये फाजिर होते हैं, फासिक व फाजिर। तो इसलिए जब ये लोग गए और मालूमात की कि ये किसके ऊँट हैं, ऊँटों पर गल्ला लदा हुआ है, चले आ रहे हैं, किसी ने बताया उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, गए फौरन जाकर उनसे राब्ता किया, हम इतने पैसे आपको देते हैं, ये सारा गल्ला आप हमें दे दें। फरमाया नहीं, इससे ज़्यादा, अच्छा, उन्होंने सोचा कि इनके तो ज़्यादा डिमांड है, थोड़ी सी कीमत और बढ़ा दी। कहा नहीं, मेरे पास एक ऐसा है जो इससे ज़्यादा मुझे दे देगा। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको देते हैं इतने पैसे, और चले ये नहीं तो चलो और बढ़ा दे। दो दफ़ा उन्होंने कीमत बढ़ा दी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे पास एक ऐसा है जो इससे भी ज़्यादा मुझे देगा। अब वो हैरान हुए, एक दूसरे को देखा, कहा नहीं इससे ज़्यादा तो कोई दे नहीं सकता। अब जाहिर है बाज़ार का जो रेट है, जो चल रहा है, वो सब जानते हैं। कहा कि हमने इतनी कीमत बढ़ा दी, ये इससे ज़्यादा फिर मांग रहे हैं, ऐसा कौन है, कौन सा ऐसा है कि जो इससे ज़्यादा देगा। फरमाया नहीं, एक है जो तुम सबसे ज़्यादा मुझे देगा, और वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है, उसी के रजा के लिए मैंने ये किया है। और उसके बाद आपने ऐलान किया कि आम मुसलमान जितने भी हैं, जो चाहे आकर इसमें से ले ले, वो जितना भी गल्ला था सब सदकात व खैरात में आपने सब लुटा दिया, एक पैसा उससे वसूल नहीं किया। उनकी सखावत ये थी, और इसी सखावत की बदौलत अल्लाह ने इतनी बरकत उनके रिजक में अता फरमाई थी कि मदीने के मालदार लोगों में उनका शुमार होता था। अपनी ज़ात के लिए एक एक चीज़ में एहतियात करते थे, और लोगों पे खर्च करने में कोई एहतियात नहीं थी। जो भी गरीब मिस्कीन बेवाएं जो भी आती थीं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने लुटा दिया करते। कहने का मकसद ये कि अल्लाह की राह में आप जितना देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 70 गुना करके फिर लौटा दे। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, वो चाहे तो उसमें और इजाफा कर। तो हमें ये चाहिए कि हम ज़खीरा अंदोजी से अपने आप को बचाएं। रमज़ान मुबारक में जो कीमतें आसमान से बातें करती हैं, जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इससे अपने आप को रोकें, बल्कि कोशिश करें कि उन कीमतों को कम करके बेच दें, ताकि गरीब लोग भी उनको हासिल कर सकें। अगर ऐसा होगा और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करेंगे, तो आप देखें अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। जिस काम में अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाए, उसमें बरकतें शामिल होती हैं। और जो खालिस उसी की पसंद के लिए, उसको राज़ी करने के लिए किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व मनवालहु उसमें अपनी रहमतें बरकतें, और उस शख्स के रिज़क में रहमतें बरकतें शामिल कर दें। बज़ाहिर महसूस होता है कि हमने ये खसारे का सौदा किया, लेकिन हकीकत में ये बड़े मुनाफे का सौदा है। ये तो अल्लाह ताला से तजारत है कि उसके बंदों की खुश इसलूबी के लिए, उनकी आसानी के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो जो काम अल्लाह के बंदों की आसानी के लिए होगा, अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर खुश होगा और अपनी रहमतें बरकतें रिज़क में शामिल करेगा। तो हमें ये चाहिए कि जितने काम हम और लोगों के लिए करते हैं, कुछ अल्लाह ताला के लिए भी करें। जिसकी जितनी हैसियत है, उतने सदक़ात व खैरात सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों, उनकी मदद करें। और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की दिलजोई करें, उसके साथ बैठकर उसका गम बांट लें, उसके गम को दूर कर दें, उसके दिल को खुश कर दें, इससे भी अल्लाह तबारक व ताला राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व मनवालहु हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएँ, इन तमाम आमाल को करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, और अपनी रज़ा की सनद हमें अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।